ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर, तपस्या भूमि, वरदानी भूमि, यहां ऐसा योग तपस्या का, भट्टी का शुभ अवसर प्राप्त होना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा भाग्य है। तो बाबा की तरफ से, दादियों की तरफ से, दीदियों की तरफ से और हम सभी मधुबन निवासियों की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। तो हम सभी जानते हैं कि संगम युग पर सर्व खजानों के मालिक शिव बाबा हम सभी बच्चों को ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से ये सभी खजाना दे करके पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनाते हैं। इस संगम युग पर हम सभी बच्चों को बहुत से भाग्य प्राप्त हैं, जिसके स्मृति मात्र से हमारे मन आनंदित हो उठता है, खुशियों में झूम उठता है। उसमें से एक महत्वपूर्ण भाग्य है जो हम अभी मुरली रिवीजन करने के लिए बैठे हैं, तो इस विषय से संबंधित है, और वो भाग्य है परमात्मा पढ़ाई का भाग्य। स्वयं भगवान सन्मुख हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं परम शिक्षक बनकर। आप भक्ति मार्ग में भी देखेंगे तो सर्वाधिक महिमा इसी के ऊपर है, इसी पढ़ाई के ऊपर है। भक्ति मार्ग में कौन सी महिमा है? गाते हैं कि तेरी मुरली में वो जादू है, तेरे ज्ञान में जादू है, तेरे योग में जादू है, ऐसा नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा महिमा है तेरी मुरली में वो जादू है। तो कौन सी जादू थी? तो भक्ति मार्ग बताते काठ की मुरलियां थी, उसकी धुन सुनते ही गोपियां मगन हो जाया करती थी, सब शुद्ध बुद्ध भूल जाया करती थी, सारा काम छोड़ करके बस उस धुन के लगन में मगन हो जाया करती थी। तो वास्तव में बाबा कहते हैं वो सच्ची सच्ची गोपियां कौन है? हम सभी हैं। तो बाबा जो पढ़ा रहे हैं, बाबा के जो महावाक्य है, उसके प्रति हमारी लगन इतनी हो कि उस समय बस सब कुछ भूल जाएं और बाबा मेरे लिए पढ़ा रहे हैं, बस यही स्मृति हमारे मन में हो। दुनिया में विद्यालय तो बहुत है, लेकिन ये ईश्वरी विश्वविद्यालय जहां भगवान आकर पढ़ा रहे हैं हमें, वो एक ही है। हम सभी जानते हैं कि हमारी दादियों ने, दीदियों ने इतने ऊंची स्थिति को प्राप्त किया, उसका आधार भी क्या था? यही मुरली, यही बाबा की पढ़ाई। लेकिन ऐसे क्या किया उन्होंने? बाबा के मुरली के प्रति विश्वास, मेरे बाबा का मुरली है, मेरे लिए बाबा सुना रहे हैं, वो लगन, वो नशा थी। हमारे दादी जानकी जी, जिन्होंने 104 के उम्र में भी कम से कम 5 बार मुरली पढ़ती थी। तो हम कितने बार पढ़ते हैं अभी? 5 बार पढ़ते हैं सभी? तो मुरली के प्रति हमारा जो अटेंशन है, हमारा जो लगन है, वो अटूट होना चाहिए। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं तो उसके मन में ये ख्याल रहता है पास विद आनर होने का, चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने का। लौकिक में भी आप देखेंगे कि जो होशियार स्टूडेंट है तो उसके मन में रहता है कि मैं सभी जो विषय है उसमें पूरा नंबर लूं। तो बाबा कहते जो होशियार बच्चे हैं उसके मन में भी यही रहता है कि मैं पूरा पास विद आनर हूं। बाबा ने कहा ना कि अगर पास नहीं होंगे, फेल होंगे तो फिर सजा खानी पड़ेगी। तो पूरा पास होना है, फुल पास। जैसे लौकिक में भी हम क्या देखते हैं, जब बच्चे होशियार होते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको साधारण काम नहीं करने देंगे। उसको कभी नहीं बोलेंगे कि आप दूध लेके आओ, सब्जी लेके आओ। बाप कहेगा कि बेटा मैं कर लेता हूं ये काम, साधारण काम नहीं करने देगा। ऐसे यदि पढ़ाई के प्रति हमारा पूरा अटेंशन है तो बाबा कभी हमसे साधारण कर्म नहीं होने देंगे, हमारे से कोई भी साधारण कर्म नहीं होगा। हट कर्म उच्च और श्रेष्ठ होगा। हम सभी जानते हैं, देख रहे हैं कि इतने हमारे लाखों भाई बहने हैं जिन्होंने चिंता मुक्त और निश्चिंत जीवन बाबा की याद में जी रहे हैं, उन सभी का आधार भी क्या है, बाबा का ये ईश्वरी महावाक्य है। तो बाबा कहते हैं कि जहां बाप साथ है तो फिर वहां सब कुछ संभव है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बस बाबा हमारे मन में बसा हो, एक बाबा दूसरा ना कोई। दादी जानकी जी कराची की एक बात सुनाती है अपने अनुभव में कि एक बार साकार बाबा दादी कुमारिका और दादी चंद्रमणि दोनों को रस्सी खींच का जो खेल होता है ना वो कराई। तो दादी बताती है कि चंद्रमणि दादी तो बहुत मजबूत थी, लेकिन दादी कुमारिका दादी प्रकाशमणि बस बाबा बाबा कहती रही, बस बाबा ही बाबा याद था उनको। तो फिर बाबा ने एक युक्ति रची और युक्ति रच करके साकार बाबा दादी कुमारिका के तरफ चले गए और उनको जिता दिए। तो यदि बाबा साथ है, बाबा के प्रति पूर्ण लगन, उनके पढ़ाई के प्रति पूर्ण विश्वास हमारे मन में है, तो बाबा कैसे भी करके हमारा मदद करता है। दादी जानकी जी दो बातें और बताती है, एक है इंटरेस्ट और दूसरा है अटेंशन। जितना हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा उतना ही अटेंशन जाएगा। जैसे किसी कोई भी चीज ले लो, जैसे किसी को अच्छे हेल्थ बनाना है या डाइट वगैरह कर रहे हैं तो नेचुरली उनको अटेंशन होता है कि मुझे क्या चीज खाना है और क्या चीज नहीं खाना है। तो ऐसे बाबा की मुरली के प्रति, पढ़ाई के प्रति हमारा अटेंशन इंटरेस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली अटेंशन उस तरफ हमारा जाएगा। तो मुरली के प्रति बाबा की ये जो भाग्य हमको प्राप्त हुआ है परमात्मा पढ़ाई का, इसके प्रति पूरा अटेंशन हमारा हो। तो पूरा अटेंशन हमारा हो इसके लिए तीन बातें हम सदा ध्यान में रखें। पहला है कि जो बाबा कहते हैं ना कि मुरली तो हमने सुन लिया, लेकिन सुन के उसका मंथन करो, अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाबा कहते हैं केवल आकर हमने मुरली सुन लिया उससे कुछ नहीं होगा, उसका मंथन करो, विचार करो, चिंतन करो, तब उसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। जैसे बाबा जानवर का उदाहरण देते हैं, गाय घास चरती है, फिर बाद में क्या करती है, वो उगाड़ती है उसको। इसे हमने बहुत पौष्टिक भोजन तो खा लिया, मुरली अच्छे से सुन लिया, और कोई पौष्टिक भोजन खा लिया इतना, अगर कहीं वो हजम नहीं हुआ तो क्या होगा, वो खून नहीं बनेगा और नुकसान कर देगा। उसी प्रकार मुरली तो हमने सुन लिया लेकिन उसका मंथन किया नहीं, उसको पचाया नहीं है। जैसे बाबा कहते दूध में से मक्खन निकालना, तो है ना, सुन लिया लेकिन मक्खन वो निकाला नहीं, मंथन किया नहीं, तो उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी बात बाबा कहते ओटे सो अर्जुन माना क्या, कि जो सामने आए, चाहे सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र में जो सामने आता है कि मुझे करना है। जैसे महाभारत में भी दिखाते हैं, जब श्री कृष्ण गीता सुनाए तो पांडव भी सुने और कौरव दोनों सुने, लेकिन अमल में किसने लाया, पांडवों ने लाया। तो बाबा मेरे लिए बोल रहा है, ऐसे नहीं कि बाबा सबके लिए बोल रहा है, मुरली तो बाबा सभी के लिए चला रहे हैं, लेकिन हमें अपने अंदर यह फीलिंग लाना है कि बाबा मेरे लिए बोल रहा है, मुझे करना है, मुझे अपनी स्थिति अच्छी बनानी है, मुझे अपने ज्ञान योग का टाइम टेबल अच्छे से बनाना है, मुझे अच्छा पुरुषार्थ करना है। तो ओटे सो अर्जुन, किसी को ना देखते हुए मुझे करना है बस। तीसरी बात, हमेशा हमारे ध्यान में रहे हमारा साथी कौन है, स्वयं भगवान है। तो भगवान को हमने साथी बना लिया तो विजय भी हमारा निश्चित है। महाभारत में यही तो हम देखते हैं कि अर्जुन का सारथी साथी कौन थे, श्री कृष्ण थे, तो वो निश्चिंत थे, सब कुछ उसको सौंप दिया, अपना साथी बना लिया। इसे जयद्रथ वध के लिए भी बताते हैं कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा तो ले ली, जब जयद्रथ ने अभिमन्यु का वध किया तो उसने प्रतिज्ञा ले ली कि सूर्यास्त से पहले वध करना है। अब प्रतिज्ञा लेकर के रात में विश्राम कर रहे थे तो श्री कृष्ण पहुंचे उनके पास, बोले कि अर्जुन तुमने इतना बड़ा प्रतिज्ञा लिया और आराम से सो रहा है। तो उसने क्या बोला कि जब आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस बाबा को अपना सब कुछ सौंप दो तो वो संभालेगा। बाबा कहते प्रॉब्लम कहां होता है, जहां मेरा आता है, मेरा घर है, मेरा बच्चा है, मेरा गाड़ी है, मेरा ये है। यदि बाबा को सब कुछ सौंप के निश्चिंत तो हो गए तो बाबा सब कुछ फिर संभालेगा। वो बाबा कहते मुरली खान है, शब्दों से इसकी महिमा नहीं कर सकते हम। और खान में क्या होता है, जितना आप खुदाई करो उतना ही रतन निकलते हैं। तो ऐसे बाबा के महावाक्य हैं, जितना आप पढ़ेंगे, जितना इसका चिंतन करेंगे, इसमें से अनेक प्रकार के रतन आपको प्राप्त होते जाएंगे। ब्राह्मण जीवन का आधार है बाबा कहते हैं मुरली, इसके बिना हमारे ये ब्राह्मण जीवन है ये सारहीन है। जैसे हम मकान बनाते हैं, जैसे बिना नींव का मकान हो तो बाहर से तो सुंदर दिखेगा लेकिन अंदर से वो उतना ही कमजोर होगा। ऐसे मुरली के बिना हमारा ये जीवन धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, इसलिए मुरली के लिए बाबा यही कहते हैं कि अटेंशन दिलाते हैं। आज भी बाबा अटेंशन दिला रहे हैं मुरली के प्रति, विशेष मुरली के प्रति जितना हमारा लगन होगा, जितना निश्चय होगा, उतनी धारणा होती जाएगी, जिसको बाबा कहते हैं लगन में मगन होना, रोज बाबा की मुरली हम बच्चों को मिलती है। क्यों मिलता है? ताकि रोज हमें नए नए रतन की प्राप्ति हो और उस प्राप्ति को हम यूज करें स्वयं के प्रति और सभी के प्रति। बाबा ये भी याद दिलाए हैं कि बच्चे तो समझते हैं कि मुरली यदि हमने नहीं पढ़ी नहीं सुनी तो फिर औरों को भी क्या समझाएंगे। तो ये बाबा की मुरली के प्रति हमारा पूरा अटेंशन हो। तो बाबा आज हम बच्चों को यही याद दिला रहे हैं। सबसे पहले मीठे बच्चे में क्या याद दिला रहे हैं कि बाबा की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना मुरली मिस नहीं करना। मुरली मिस नहीं करना माना क्या? श्रीमत का उल्लंघन करना। तो श्रीमत मुरली हम नहीं सुनते हैं, मिस करते हैं, तो बाबा का डिसरिगार्ड तो करते हैं, बस हम अपने आप को भी कमजोर कर लेते हैं। जब हम मिस करते हैं तो फिर माया मिस कराती है। माया मिस कराती है माना वो हमसे फिर गलती करा देती है। बाबा कहते हैं ना माया चूहिया है, तो चूहिया क्या करती है? फूंक मारती है। ऐसे धीरे धीरे फूंक मारेगी, काटेगी, पता नहीं चलेगा आपको। तो माया भी कौन सी फूंक मारती है? आलस्य और अलबेलापन का। चलो आज नहीं किया, कल कर लेंगे। चलो आज मुरली नहीं सुना, आज अमृत वेला नहीं किया, कल कर लेंगे। ऐसे धीरे धीरे आलस्य और अलबेलापन का फूंक मारती है, आपको पता नहीं चलेगा। और जब पता चलेगा तब तक वो अपना काम कर लेती है। जैसे साइकिल एक पहिया होता है ना, साइकिल के पहिए में तार लगा होता है। जब एक दो तार निकल जाता है ना तो पता नहीं चलता, लेकिन एक साथ जब 8-10 तार उसमें से निकल जाए तो उसका जो बैलेंस वो क्या होता है, वो बिगड़ने लगता है। जैसे राजा लोग होते थे, हम ही थे, है ना, हमारे पूर्वज है, तो राजा लोग क्या करते, जैसे उनको आक्रमण करना है तो आक्रमण करना है तो डायरेक्ट आक्रमण नहीं करते थे। पहले उनके मंत्रियों को, खजांचियों को लालच दे करके अपने वश में करते थे, और अपने वश में करने के बाद में पहले जो उनके आर्थिक स्थिति है सामने वाले की, उसको कमजोर करते थे। जैसे अच्छे शस्त्र को बदल के कोई पुराना सा डाल दिया, अच्छे नस्ल के घोड़े को चेंज करके ऐसे दुर्बल कमजोर सा डाल दिया। फिर जब आक्रमण करते थे, राजा को बाहर से लगता था कि सब कुछ वैसी के वैसी ही है, लेकिन जब आक्रमण होता था फिर उसको हार का सामना करना पड़ता था। ऐसी हमारे साथ भी होता है, एक दिन दो दिन मुरली नहीं सुना तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे 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 वो कमजोर हमको अंदर से करता जाता है, और जब परिस्थितियां आती है तो फिर हम हार जाते हैं क्योंकि अंदर से मजबूत नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे एक दिन भी आपको मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली हमें श्रीमत देते हैं और श्रीमत रूपी हाथ हमारे सिर पर है, तो बाबा कहते हैं आप सेफ हो, सुरक्षित हो। जहां आप श्रीमत को भूलते हो तो गलती फिर वहीं से होना चालू होता है। श्रीमत क्या है? लक्ष्मण रेखा है। जैसे रामायण में आप सभी ने सुना होगा, कि सीता की ऐसी हालत क्यों हुई? क्योंकि उसने लक्ष्मण रेखा को पार किया। तो जब तक हम लक्ष्मण रेखा के अंदर हैं, जब तक बाबा की श्रीमत हमको याद है, तब तक हम सेफ हैं। बाबा हमको सुरक्षित रखता है। बाबा कहते मुरली के प्रति हमारा ऐसा अटेंशन हो, केवल हाल में आकर बैठ गए, क्लासरूम में आकर बैठ गए, बाबा कहते इतना काफी नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं हम में से कई भाई बहने, जैसे हम क्लास में आते हैं तो सबसे पहले मोबाइल निकालते हैं, मोबाइल निकालेंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, समझते हैं कि दोनों काम हो जाएगा, फ्री टाइम समझते हैं। बाबा कहते मुरली सुनने की विधि यही है कि बाबा जो जो सुना रहे हैं आप उसका अनुभव करते जाएं। बाबा स्वर्ग की बातें मुरली में बता रहे थे, आप स्वर्ग में चले जाओ। परम धाम की बातें सुना रहे हैं तो आप परम धाम में चले जाओ। जैसे जैसे बाबा मुरली सुना रहे हैं वैसे वैसे आप उसमें रमन करते रहो, तो बाबा परम धाम ऊपर की बात कर रहे हैं और हम नीचे मुरली सुना रहे हैं। बाबा कहते ये भी डिसरिगार्ड है, ये भी मुरली मिस करने जैसा ही है। जब तक हमारा पूरा ध्यान नहीं है, जब तक हमारा मन यहां नहीं है, हम हाल में यहां बैठे हैं लेकिन हमारे मन दूसरे चिंतन में है, तो बाबा कहते ये भी मुरली मिस करने जैसा, ये भी बाबा का डिसरिगार्ड ही है। बाबा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जिसका मुरली से प्यार नहीं है उसका मुरलीधर से प्यार नहीं हो सकता, और जिसका मुरलीधर से प्यार नहीं है उसका जीवन नैया पार नहीं हो सकता। तो बाबा का प्यारा बनना है हमें, उसका दुलारा बच्चा बनना है, तो मुरली से हमारा बहुत प्यार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम चलाओ, कई बार कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि चलो मुरली में चलते नहीं तो बहन जी बोलेगी। बाबा का डर नहीं है लेकिन बहन जी का डर है कि मुरली में नहीं जाएंगे तो बहन जी बोलेगी। तो बाबा कहते मजबूरी में मुरली नहीं सुनना, अगर यहां मजबूरी में सुनोगे तो बाबा कहते वहां जाके फिर क्या करना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा। यहां आप विधि पूर्वक सुनेंगे तो बाबा कहते फिर पूजा भी आपका विधि पूर्वक होगा। यदि यहां आपने विधि पूर्वक मुरली नहीं सुना तो फिर पूजा भी विधि पूर्वक आपका नहीं होगा, पद भी आप फिर ऐसे पाओगे। एक बार की बात है, हम 2017 में जम्मू कश्मीर के टूर पे थे, तो एक वहां रघुनाथ मंदिर है, वहां हमारा जाना हुआ, तो हम वहां पर ऐसे टाइम में पहुंचे कि वहां शिवलिंग बना हुआ है, शिव बाबा का है, फिर 108 है, फिर पूरा माना 33 करोड़ जो बाबा कहते, ऐसे छोटा 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 वहां शिवलिंग बना हुआ है। तो हम जिस समय वहां पहुंचे तो वहां जो पुजारी थे वहां के वो स्नान वगैरह करा रहे थे, उनको चंदन वगैरह सब लगा रहे थे, तो हमने देखा कि शिव बाबा को बहुत अच्छे से नहलाए धुलाए हैं, दूध दही उसमें डाले, उसमें चंदन लगाए, फिर जो उसके नीचे जो थे 108 का उसको भी थोड़ा अच्छे से धुलाई किया, चंदन वगैरह लगाए बढ़िया से, फिर अब इतने सारे नीचे थे पूरा 33 करोड़, अब इतने को कैसे एक एक को नहलाए। तो हमें बहुत हंसी आई वहां पर कि उसने क्या किया, पाइप लिया और पाइप लेके पूरा पानी ऐसी डाल दिया। तो सोचो ये सब हमारे गायन है, यदि विधि पूर्वक अभी हमने नहीं किया फिर ऐसी काम चलाओ हमारी पूजा होगी, तो आप सोच लो। तो बाबा मुरली के ऊपर हमारा पूरा अटेंशन हो, इसीलिए बाबा कहते मुरली कभी मिस नहीं करो। बाबा का जो श्रीमत है बाबा ने हमें सुबह से लेकर अमृत वेला से लेकर के रात तक का श्रीमत दिया है, उस श्रीमत को हम पालन करते चले। तभी हम बाबा के दिल पर चढ़ पाएंगे और उनके श्रीमत का रिकॉर्ड रख पाएंगे। दूसरी बात, बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं, कौन सी याद दिला रहे हैं प्रश्न में बाबा, कि तुमसे कोई पूछे राजी खुशी हो, क्या बोलना है, है? जी है? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाली, उसको हमने पा लिया, और क्या चाहिए, पाना था सो पा लिया। बाबा कहते हैं बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। बाबा शब्द बोलते ही मन में क्या होता है, खुशी आती है, वाह बाबा वाह आता है, वाह बाबा वाह। तो बाबा भी क्या कहते हैं, वाह बच्चे वाह। तो हम भगवान के बच्चे होकर वाह वाह नहीं हुए तो फिर और कौन होगा।